समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से ही ये आवाजें आपको झकझोर रही होंगी, खिड़की खोली होगी ना तो यही नजारा नजर आ रहा होगा कि आज ये क्या हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ ये होता रहेगा अगले आधे घंटे, और भी बहुत कुछ होगा जिसमें आज हम आपको दिन भर के लिए तैयार कर देंगे। हम कौन? हम, मैं नवीन, और आज मेरे साथ सायरा मुश्तबा, एक लंबे अरसे के बाद। सायरा,
यस, एक बहुत लंबे अरसे के बाद इनफैक्ट, और कितने अच्छे दिन, इज़न्ट इट? इट्स अ वीकेंड एडिशन ऑफ आज सवेरे, एंड नॉनदलेस आज वाकई में मौसम बेईमान हो चुका है,
बहुत बेईमान।
तो जम के आप सब लोग बेईमानी कर सकते हैं विद योर लव्ड वंस, वेदर यू वांट टू गो ऑन एन एक्सकर्शन और जस्ट हैव सम क्वालिटी टाइम एट होम।
तो सायरा, आज सवेरे के आज की शुरुआत इस खूबसूरत गीत से करते हैं और अगले आधे घंटे तक यही माहौल बना के रखते हैं।
आज नवीन, मौसम तो बेमान है ही है, बट वेरी एप्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस दिस सॉन्ग्स। एक तो मौसम की वजह से, और दूसरा जिस इंसान ने इसको कंपोज किया है उसको भी आज हम याद करने वाले
हैं। आज हम याद करने वाले, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। तूफान सुबह 5 बजे से आ चुका है दिल्ली की सड़कों पे। अगर आप बाहर निकलेंगे तो पेड़ आपको गिरे हुए नजर आएंगे, कहीं कहीं थोड़ा पानी भी भरा होगा, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे आज दिन भर बहुत खूबसूरत रहने वाली है दिल्ली का मौसम। और तेज हवाएं हैं, भीषण गर्मी से बिल्कुल आपको राहत मिल चुकी है, और मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट भी जारी किया है। सारा कहते हैं कि आज वो ओले गिर सकते हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, इसलिए एक छोटी सी चेतावनी हम आपको दे देते हैं कि देखिए, अगर आप बाहर हैं तो कम से कम पेड़ों के नीचे तो बिल्कुल मत खड़े होइएगा।
पेड़ों को दूर से निहारिए, बालकनी से निहारिए।
अब बालकनी से बात आई है तो देखिए, अपने चाय का कप लीजिए, रेडियो का वॉल्यूम तेज कर दीजिए, और गीतों और खबरों के साथ अगला आधा घंटा गुजारिए।
काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है।
तो सर, बारिश और मौसम के अलावा क्या कुछ है आपके पास
भाई? आज बिकॉज दिस इज द लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ, तो नेचुरली आज मन की बात तो होगी ही होगी, तो ऑफकोर्स इट्स आई थिंक अ वेरी वेरी मेमोरेबल डे टुडे, सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। नवीन,
बिल्कुल।
Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 122nd episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, AIR News website and News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.
अगली खबर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली में सुशासन पर आयोजित विचार सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विचार विमर्श में भाग लेंगे।
एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 उपमुख्यमंत्री आज दिल्ली में सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए इस बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के सुशासन विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। बैठक के दौरान दो प्रमुख प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। पहले प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना गणना के दौरान जाति आधारित गणना के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया जाएगा। इस सम्मेलन में एनडीए शासित राज्यों की श्रेष्ठ शासकीय प्रथाओं पर भी विचार विमर्श होगा। विभिन्न मुख्यमंत्री अपने राज्यों में लागू की गई सफल पहलों और योजनाओं के बारे में अपने अनुभव भी साझा करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Center has approved 8.25% interest rate on employees' provident fund EPF deposits for financial year 2024-25. This will benefit over 7 crore salaried employees across India. This rate was recommended earlier this year by the Central Board of Trustees of the Employees' Provident Fund Organization or EPFO. The approved rate remains unchanged from 2023-24 fiscal, while it was 8.15% in 2022-23. The EPFO has also made significant operational strides, achieving a record 2.16 crore auto claims settlements as of March 6, 2025 in the current financial year, up from 89.52 lakh in 2023-24.
आइए अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड में चमोली स्थित हेमकुंट साहिब के कपाट आज खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से शांतिपूर्ण यात्रा के लिए भी सभी आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं।
Now moving on to the world of sports, in shooting, India's Shambhavi Shravan Sheersagar clinched gold in the women's 10-meter air rifle event at the ISSF Junior World Cup 2025 in Germany last night. Moreover, another Indian, Ojasvi Thakur, bagged silver in the same event. We have more from our sports desk.
More resounding as she held the lead from the very beginning despite a solid challenge from her teammate Ojasvi Thakur. The pair had started well alongside Li Shijia of China with Carlota Salefi of Italy and Olympic silver medalist Huang Yuting of China close behind. With this, India has jumped to the top of the ISSF Junior World Cup points table with a total of 8 medals including 2 gold, 3 silver and 3 bronze medals. In tennis, Serbian superstar Novak Djokovic has scripted another history by becoming the third man to reach 100 career ATP Tour titles. Djokovic defeated Hubert Hurkacz in the Geneva Open final in Switzerland to reach this milestone. With this victory, Djokovic joined Jimmy Connors and Roger Federer as the only men in the Open era to win 100 or more titles. In IPL T20 cricket, Delhi Capitals ended their campaign on a high note with a commanding 6-wicket win over Punjab Kings in Jaipur last night. Chasing a stiff target of 208, Delhi Capitals crossed the winning mark in the final over with Sameer Rizvi's maiden half century, who was also adjudged player of the match. Today, host Gujarat Titans will face Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad from 3:30 p.m., followed by another clash between Sunrisers Hyderabad and Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi from 7:30 p.m. At last, the inaugural edition of the Hockey India Masters Cup 2025 will be hosted by the Hockey Unit of Tamil Nadu in Chennai from 18th to 27th of next month. The event marks a new chapter in Indian hockey as a player must be aged 40 and above to compete in the men's category and 35 and above in the women's category. Chirag Joy, Sports Desk.
सारा देश का पूर्वोत्तर हिस्सा जो है ना, न सिर्फ अपनी हरी भरी वादियों, झरनों, हरियाली और बड़े बड़े मैदानों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। जानती हैं, वहाँ खेलों की दुनिया में भी लोगों ने बहुत कुछ नाम कमाया है। और इसी के चलते युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से किसी एक राज्य में खेलो इंडिया पूर्वोत्तर खेलों का आयोजन करेगी। नई दिल्ली में उभरते पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कई पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र में खेल व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 में ओलंपिक खेलों के आयोजन को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्री ने कहा कि वर्षभर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी भारत समुचित स्थान है। तो ये थी वो खबरें जिस पे दिन भर आज आपकी नजरें रहेंगी। और अब वक्त है महानगरों से जुड़ी हुई खबरों का। तो आइए सबसे पहले चेन्नई की खबरों के लिए सीधे सायरा के पास चलते हैं।
Well, Naveen, the denizens of Chennai are definitely going to have a treat, especially the nature lovers are going to have a treat because the 48th Year Court Summer Festival, it began with a grand show and fruit and vegetable exhibitions at Anna Park in the hill station. The flower show features replicas of wildlife and notable landmarks in a bid to raise awareness on wildlife conservation. The highlight of the show is the replica of Mettur Dam that is made of 73,000 colorful roses. Oh my God, Naveen, khali imagine karke kitna haseen lag raha hai.
Waqai itne sare gulab ikhatte maza hi aa jayega. You kahenge na ek wadi si ban jayegi puri phoolon ki.
Bilkul wadi si ban jayegi and especially agar aap dekhe wo different shapes jo unhone diye hai Mettur Dam banaya hai. Uske alawa not only that, there are also replicas of elephants, tigers and other wild animals that are artistically created with 50,000 and roses to promote wildlife awareness. And बच्चों की भी मौज होने वाली है, बड़ों की भी तो होगी होगी, isn't it? और बच्चों के लिए खास तौर से cartoon characters are also there that are shaped with roses. And additionally, more than 30,000 colorful flower pots are on display at Anna Park.
यानी इस पार्क में आज आप देख सकते हैं फूलों का हाथी, फूलों के कार्टून और फूलों के बहुत सारी वैरायटी
और वाइल्ड
लाइफ, है ना? दिल्ली का रुख करते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित नीति आयोग की शासकीय बैठक में भाग लिया. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में दिल्ली से संबंधित कई विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें हर घर नल से जल, यमुना की सफाई जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल थे.
दिल्ली के सारे विषय, चाहे वो हर घर नल के द्वारा जल हो, यमुना की सफाई हो, उसमें आपसी राज्यों का कोऑर्डिनेशन से लेकर के केंद्र से हमारी जो हमें सहायता चाहिए, सभी विषयों पे चर्चा हुई और बहुत ही पॉजिटिव चर्चा रही और उसमें दिल्ली को मुझे लगता है कि पूरे देश भर से सहयोग मिलेगा.
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में एक नया टूरिस्ट सर्किट बनाने पर काम कर रही है, ताकि दिल्ली में घूमने आने वाले सैलानियों को नई नई जगह घूमने को मिले. दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कल शहर के दिलशाद गार्डन में सुगम्य सहायक योजना के तहत दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, वॉकर, ब्रेल किट, स्मार्टफोन और स्मार्ट स्टिक जैसे कई उपकरण वितरित किए. अगली खबर, संघ लोक सेवा आयोग आज दिल्ली सहित देशभर में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कर रहा है. इसके चलते दिल्ली मेट्रो ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पिंक, मेजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सुबह आज 6 बजे से शुरू कर दी. हालांकि आमतौर पर रविवार को मेट्रो सेवाएं सुबह 7 बजे से शुरू होती हैं. और बात दिल्ली के हवाई अड्डे की, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त और सबसे ग्रीन हवाई अड्डा बन गया है. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डा एशिया का एकमात्र एयरपोर्ट है जिसे कार्बन उत्सर्जन कम करने में उच्च मान्यता लेवल 5 एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से मिली है.
That's quite a feat for our country, we can say. And moving on to some more news from down south, from the city of Bengaluru. Well, Karnataka Governor Thavarchand Gehlot advocated community participation in disaster preparedness and response. He was speaking at the World Disaster Management Conference in Bengaluru yesterday, saying that the community is the backbone in disaster management. The governor stressed that trained persons at the local level are empowered to manage disasters and significantly reduce the impact of disasters. Apart from this, the governor also advised that a disaster management committee should be formed in every village with trained manpower and proper resources to deal with disasters. He added that every school should incorporate disaster management training with proper integration of disaster management with overall development policies. One more story coming in from Bengaluru. Bengaluru South Member of Parliament Tejaswi Surya has proposed a 15-point agenda to address the growing infrastructure and mobility challenges in Bengaluru. In a statement, the parliamentarian has proposed the formation of a vision group that can act as a think tank to chart out a long-term future-ready roadmap for the planned development of the city. He also suggested technology-driven traffic management through smart signals, real-time monitoring and AI-based interventions.
मुंबई का रुख करें तो मुंबई क्षेत्र में रेल क्षमता को बढ़ावा देने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेल मंत्रालय ने पनवेल सोमताने और पनवेल चिखली के बीच नई कार्ड लाइनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. वहीं सेंट्रल रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई और हजूर साहिब नांदेड़ के बीच एक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन की घोषणा की है. ये ट्रेन आज दोपहर 3:50 से रवाना होगी और कल सुबह 6:30 बजे नांदेड़ पहुंचेगी.
And now some news from Hyderabad. Telangana Chief Minister E. Revanth Reddy has called on Prime Minister Narendra Modi and sought his intervention and support in expediting approvals for key projects. Mr. Reddy also sought financial assistance for projects including metro rail expansion, road and rail infrastructure, semiconductor manufacturing and defence sector growth. An official release stated that the Chief Minister explained the necessity of expanding the Hyderabad Metro Rail. He also discussed the critical regional ring road or RRR project and requested financial and cabinet approval for both the northern and southern sections simultaneously to avoid cost escalations.
पश्चिम बंगाल का रुख करें तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से पहले पहुंचने की उम्मीद है और उम्मीद यह भी की जा रही है कि यह बहुत जल्द उत्तर में बंगाल के उप हिमालय जिलों तक पहुंच जाएगा। मानसून पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में सामान्य से पहले ही पहुंच गया है। ज़ाहिरा आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है और आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर्ष बुजुर्जी तारापोर का स्मरण कर रहे हैं।
1923 में मुंबई में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेश्वर बुजुर्जी तारापुर को अप्रैल 1951 में पूना हॉर्स में नियुक्ति मिली। 1965 में भारत पाक युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध सियालकोट सेक्टर के फिलोरा में हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर की कमान में 17 हॉर्स ने पीछे से फिलोरा पर अचानक हमला करने का फैसला किया। जब रेजिमेंट फिलोरा और चाविंडा के बीच आगे बढ़ रही थी तो वजीर वली से दुश्मन की ओर से अचानक हमला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जमीन पर डटे रहे और अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए वजीर वली पर कब्जा कर लिया। अपनी चोट की परवाह किए बिना अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और जसोरन और बुटुर डोंगराडी पर भी कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में उनके अपने टैंक पर कई बार हमला हुआ, लेकिन बाधाओं के बावजूद उन्होंने दोनों जगहों पर अपनी धुरी बनाए रखी और सहायक पैदल सेना को चाविंडा पर पीछे से हमला करने में मदद की। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मन पर जमकर हमला किया और लगभग 60 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर वीर गति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
और अब रुख करते हैं मौसम का। दिल्ली की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बारिश हो ही रही है। अधिकतम तापमान फिर भी आज 38 डिग्री के आसपास रहेगा और न्यूनतम कुछ और कम हो जाएगा। मुंबई की बात करें तो आज सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आज बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है, तापमान 37 डिग्री और 21 डिग्री के बीच रहेगा।
एंड वेल नवीन, डाउन साउथ तो अगर देखा जाए तो ऑलरेडी मॉनसून के आने से पहले जो उनकी आमद शुरू हो चुकी है, isn't it? So, मौसम तो बहरहाल साउथर्न इंडिया में मोर और लेस सिमिलर रहेगा। एंड चेन्नई विल हैव अ क्लाउडी स्काई, लाइट रेन इज एक्सपेक्टेड नेचुरली। मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29, मैक्सिमम विल बी अराउंड 37। वाइल बेंगलुरु विल ऑल्सो यू नो इट्स एक्सपेक्टेड टू हैव रेन और थंडर शावर्स ओवर देयर। टेम्परेचर इन बेंगलुरु विल हॉवर बिटवीन 21 एंड 27 डिग्री सेल्सियस। वाइल हैदराबाद विल हैव अ क्लाउडी स्काई टुडे। Temperature will hover between a minimum of 25 and a maximum of 32 degrees Celsius.
तो चलिए अब डालते हैं नजर उन घटनाओं पर जो जुड़ी हुई हैं आज के दिन से। लेकिन सायरा, आज का दिन फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत खास है।
Yes, absolutely, Naveen, because today marks a momentous occasion in sports history, the 101st anniversary of the first international football tournament that was held on 25th of May in 1924 during the Summer Olympics in Paris. To commemorate this milestone, the United Nations has officially declared 25th of May as World Football Day. And Naveen, football is more than just a game for many people. And agar India mein baat kare to mostly Bengal ke log zyada you can say shaukeen hote football ke. And if we talk about the world, United States mein to ek religion ki tarah hai football, isn't it?
Sara khel bahut khoobsurat hai. Ek football aur 22 log khel sakte hain.
Absolutely. And it was not just those 22 players, so many people who watch them, even they are equally involved in the game, and it brings people together from all walks of life, fostering mutual understanding, tolerance and solidarity across nations. As we celebrate World Football Day, we are reminded that football is not just a sport. It's a universal language that bridges divides, inspires dreams and brings the world together. One goal at a time.
वाकई बिल्कुल वैश्विक भाषा की तरह काम करता है. आप कहीं भी किसी भी देश में हो ना, भाषा चाहे आती ना हो, फुटबॉल से जुड़ जाते हैं. नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की और घटनाओं पर जो जुड़ी हुई हैं आज के दिन से. आज के दिन 2013 में 80 वर्ष के जापानी पर्वतारोही ने सबसे अधिक उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था.
आप तो 2013 तक आ गए. लेट मी टेक बैक द लिसनर्स टू द ईयर 1915. वेल, महात्मा गांधी, ही एस्टैब्लिश्ड द साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद. आल्सो इन 1946 जॉर्डन बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन.
1877 में वो आज का दिन था जब दो यात्रियों से भरा स्टीमर सर जॉन लॉरेंस ओडिशा के तट के पास डूब गया था.
In 1963, for the first time in African history, 32 African countries came together to form the Organization of the African Union. Also on this day, in 1995, American scientists received the DNA of living organism for the first time. They succeeded in decoding that.
तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से. और अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जो जुड़े हैं आज के दिन से. सबसे पहला नाम आता है रास बिहारी बोस का. आज उनकी जयंती है. रास बिहारी बोस का जन्म 1886 में पश्चिम बंगाल में हुआ था. अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि रखने वाले रास बिहारी बोस बहुत कम उम्र में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उन्होंने खिलाफत शुरू कर दी थी. खास बात यह है कि 1937 में उन्होंने भारतीय स्वायत्त संघ की स्थापना की और सभी भारतीयों का आह्वान किया और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया.
We are remembering another very important and great personality today. Agar hum kahenge Nawab Mirza Khan ko yaad kar rahe hain to shayad aapki samajh mein nahi aayega. But yes, if I say that Nawab Mirza Khan was the real name of Dagh Dehlvi. Dagh Dehlvi, of course, unko kisi bhi you can say introduction ke mohtaj nahi hai. One of the greatest Urdu poets and who belonged to the old Delhi school of Urdu poetry. Aur agar ek mere khayal se shayar ka jo sabse bada tribute hota hai उसकी शायरी ही है.
बिल्कुल.
तो इरशाद है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है.
वाकई सारे जानते हो दाग दहलवी की शायरी इश्क और मोहब्बत की सच्ची तस्वीर पेश करती थी. और ये शेर भी वही सब कह रहा था. अपनी शायरी के युग में वो उन्हें बहुत शायरों के करीब रहे, जैसे गालिब थे, बॉमिन, जॉक, शेफ्ता कोई अपनी शायरी से नहीं चौंकाया, बल्कि बहुत ही अपनी सीधी सादी भाषा में और बहुत ही नाटकीय आकर्षण के साथ आम लोगों को भी अपना प्रशंसक बना दिया. दाग दहलवी कहते हैं कि खूब पर्दा है कि चिलबन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं.
हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग, जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं.
तो चलिए आज आप दाग का दीवान खोल के रखिएगा, उनकी शायरी का लुत्फ उठाते रहिएगा. मौसम बहुत अच्छा है और अपना दिन बनाए रखिएगा.
यस, एब्सोल्युटली, सच अ रोमांटिक वेदर टुडे एंड नॉट अ बेटर डे टू रिमेंबर सच अ रोमांटिक पोएट आल्सो, इजंट इट.
आइए अब बॉलीवुड का रुख करते हैं. आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त की पुण्यतिथि है. उनको गुजरे जमाना हो गया लेकिन आज भी दर्शकों के दिलों में उनकी यादें ताजा हैं. मशहूर अभिनेता बनने से पहले सुनील दत्त रेडियो अनाउंसर थे और इनकी इस लंबी यात्रा में बेहतरीन फिल्में, यादगार गीत और समाज सेवा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है. खुद झेलम में जन्मे सुनील दत्त का असली नाम जानते हैं क्या था? बलराज दत्त. लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल कर रख दिया सुनील दत्त. बहुत से डायलॉग उनके फेमस हैं लेकिन ये डायलॉग मुन्ना भाई MBBS का है. आइए पहले ये सुनते हैं और उन्हें याद करते हैं.
10 साल तक तू झूठ बोलता रहा, उस वक्त तेरी आंख में शर्म नहीं आई और आज जब तेरे बाप को तुझ पे नाज है तू सर झुकाए खड़ा है. मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोग मेरे बेटे को इतना प्यार करते हैं.
लेकिन बाबूजी,
मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। अरे पगले, डॉक्टर तो सिर्फ जान बचाते हैं, तूने तो लोगों को जीना सिखा दिया। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे।
Indeed, a very memorable dialogue, and I remember जो behind the scenes stories होती हैं उसमें दोनों सुनील दत्त and संजय दत्त revealed that they actually cried in this scene, क्योंकि we all know that you know the turbulences that came in संजय दत्त's life and कैसे सुनील दत्त एक pillar की तरह अपने बेटे के साथ हमेशा खड़े रहे, and not just that, if we talk about his accomplishments, very fine and handsome actor of his times, and he acted in more than 80 films in his career that spanned over 5 decades. Who received 3 Filmfare Awards, including 2 for Best Actor. He debuted in 1955 with the Hindi film Railway Platform, but unki bahut sari filme hain, Naveen, Ek Hi Rasta, and of course Mother India mein Birju ko kaun bhool sakta hai?
Kaun bhool sakta hai? Sadha, Insaan, Jaag Utha, Mujhe Jeene Do, Khandaan, Mother India, aur zyadatar humne unko Daku ke role mein dekha hai na? Lekin aaj Sunil Dutt ko hum is ek aur behtareen aur bahut hi khoobsurat geet ke saath yaad karenge.
तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं, तुम अगर साथ दे।
सर, हिंदी फिल्मों की कहानियां जितनी बेहतरीन होती है, उनका गीत संगीत इन कहानियों में और 4 चांद लगा देता है। और संगीत की धुनों को मशहूर और खूबसूरत बनाने के लिए बॉलीवुड की कई जोड़ियों ने काम किया, और उनमें से एक जोड़ी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
Yes, absolutely. The duo composed music for, can you guess the number for how many movies? Kuch andaaza hai, Naveen?
Nahin.
750. Can you imagine?
750?
Yes, 750 movies, working with several prominent filmmakers of their times. And we all know that Lakshmikant, he spent 2 years in the company of the well-known mandolin player Hussain Ali. He began organizing and performing in Indian classical instrumental music concerts to earn some money. Later in the 40s, he also learned mandolin from Bal Mukund and violin from Husna Lal. Then he began his film career as a child actor. और ये बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि जो फिल्म थी भक्त पुंडालिक, it came in 1949 and another film in आँखें in 1950. He also acted in some Gujarati films, लेकिन जो उनका music composition का career है, that is history.
मदारी, सट्टा बाजार, छलिया, दिल तेरा, हम भी तेरे, ऐसी बहुत सी फिल्मों में हैं उन्होंने काम किया। लेकिन इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मशहूर निर्माता निर्देशक बाबूभाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारसमणि में काम किया, और इसके बाद इनकी तकदीर बदल गई और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। याद कर रहे हैं आज इस जोड़ी को उनके खूबसूरत गीतों के।
मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुख सत होगी मेरे महबूब।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं।
Yes, indeed, a beautiful number. और जो शुरुआत में हमने गाना मौसम पे बजाया, मौसम बड़ा बेमान है, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। एंड क्विकली लेट्स जस्ट रिमेम्बर करण जौहर ऑन हिज बर्थडे टुडे इस गीत के साथ, जो कि एप्ट रहेगा जाते जाते।
बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो।
आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के संग पे बस इतना ही। अब मुझे नवीन और सायरा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।